मंडल 23वां सूक्त और 21वां मंत्र। आपः प्रणीत भेषजं वरूथं तन्वे ममं ज्योकच सूर्यं दृशे। पदार्थ, मनुष्यों को योग्य है कि जो सब पदार्थों को व्याप्त होने वाले प्राण सूर्यम सूर्यलोक के दृशे दिखलाने वा ज्योक बहुत काल जीवाने के लिए मम मेरे तन्वे शरीर के लिए वरूथम श्रेष्ठ भेषजम रोग नाश करने वाले व्यवहार को प्रणीत परिपूर्णता से प्रकट कर देते हैं, उनका सेवन युक्ति ही से करना चाहिए। भावार्थ, प्राणों के बिना कोई प्राणी व वृक्ष आदि पदार्थ बहुत काल शरीर धारण करने को समर्थ नहीं हो सकते। इससे क्षुधा और प्यास आदि रोगों के निवारण के लिए परम अर्थात उत्तम से उत्तम औषधों के सेवन को सेवन करने से योग युक्ति से प्राणों का सेवन ही परम उत्तम है, ऐसा जानना चाहिए। वेद में कई विषय हैं और प्राण भी उसका एक विषय है। मुख्य रूप से हमारा जो जीवन है उसका मूल आधार प्राण ही है। ये मेरा फेवरेट टॉपिक है प्राण, क्योंकि मैंने अपने जीवन में भी अपने कुछ छोटी मोटी साधनाओं से प्राण को कुछ समझ पाया हूँ। मैं ये नहीं कहता मेरी बहुत अच्छी समझ होगी, परंतु मेरी इस प्राण रूपी ये जो विषय है प्राण की, इसमें बहुत रुचि है। और यह मंत्र जो है वो मुख्यतः यही बता रहा है कि जो प्राण है वह जीवन का आधार है। और आप अगर देखें इस सूक्त में मुख्यतः रोग निवारण के ऊपर मेन चर्चा की जा रही है। इसमें ये नहीं कहा जा रहा है कि पेट दर्द है तो अजवाइन खा लो, इसमें यह बताया जा रहा है कि मुख्य रूप से समझना पड़ेगा कि जो शरीर का ये जो तंत्र है वो किस प्रकार से काम करता है, इसका जो मूल है वो क्या है। तो हमने पिछले मंत्रों में जाना कि देखिए कुछ इतने उत्तम उत्तम पदार्थ ईश्वर ने रचे हैं जिनसे हमें प्राण शक्ति प्राप्त होती है। जैसे पिछले मंत्र में हमने जाना कि जल के माध्यम से हमें औषधियों का सार प्राप्त होता है जिससे हमारी रक्षा होती है, हमारे शरीर की रक्षा होती है और जीवन की रक्षा होती है। इस मंत्र में ये कहा जा रहा है कि ये जो वायु है इसी का सूक्ष्म स्वरूप प्राण है, और ये जो वायु है इसका अगर हम ठीक प्रकार से सेवन करें तो हमारे प्राणों की रक्षा हो सकती है। अर्थात इसका जो सूक्ष्म स्वरूप है उसकी रक्षा हो सकती है, हमारे जीवन की रक्षा हो सकती है। और इस वायु और प्राण को यदि ठीक कर लिया जाए तो हमारा जो जीवन है वह लंबे काल तक हो सकता है स्वस्थ आयु के साथ। अब ये मंत्र तो जब सृष्टि प्रारंभ हुई थी तभी आ गया था, तभी बता दिया गया कि भाई मनुष्य लोगों अपने प्राणों को ठीक से संभाल लो तो आपकी लंबी आयु हो जाएगी। अब आप देखते हैं आजकल योग का बहुत प्रचलन है, बहुत तरह के योग बाबा प्रसिद्ध हैं, कई तरह के आसन प्राणायाम कराते हैं। तो ये जो आसन है प्राणायाम है, जो वायु को कंट्रोल करने की जो स्किल है, जैसे ड्राइविंग एक स्किल है, जैसे खाना बनाना एक स्किल है, उसी तरह से अपने शरीर और वायु को नियंत्रण रखना भी एक स्किल होती है। हालांकि आजकल जब से इसके अंदर पश्चिम जगत घुसा है, जब से इसमें यूरोप और अमेरिका घुसे हैं, इन लोगों ने इसको एक व्यापार का रूप दे दिया बहुत बड़े पैमाने पर। परंतु जो योग है मुख्यतः उसका जो संपूर्ण जो उसका सार है वो ये है कि हम अपने शरीर मन आत्मा को एक लय में लाकर अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करते हुए अपने जितने चारों पुरुषार्थ है धर्म अर्थ काम मोक्ष उनकी प्राप्ति करें, यही योग का मुख्य आधार है। योग एक तरह से साधन है, योग एक व्हीकल है, एक वाहन कह लीजिए आप इसको, या आपको आपके गंतव्य तक पहुँचा देगा या आपको आपके लक्ष्य तक पहुँचा देगा। आपके पास यदि योग नहीं है तो भी आप जीवन जियेंगे, ऐसा नहीं है तुरंत मर जाएंगे, आप जीवन तब भी जिएंगे। परंतु योग यदि आपके जीवन में रहता है तो उस जीवन को बहुत आप सरलता के साथ और बहुत ही मिठास के साथ जी पाएंगे। अन्यथा अगर यदि आपके जीवन में योग नहीं है तो एक घर्षण पैदा होता है, एक फ्रिक्शन पैदा होता है जीवन में आपके ऊर्जा तंत्र में, जिससे कि आपको जीवन जीने में बड़ी कठिनाई होती है। इसको मैं एक ऑडियो में नहीं समझा सकता ये, क्योंकि ये बहुत ही अनुभव के स्तर पर समझने वाली बात है कि जब हम इसको आप मैं थोड़ा सा सरलता से समझाने की कोशिश करूँगा अगले दो चार पंक्तियों में कि देखिए हमारा जो शरीर है, हमारा जो मन है मुख्यतः वो जीवात्मा द्वारा स्वयं रचित होता है। ये जाने और अनजाने दोनों तरह से मनुष्य जीव आत्मा जो होता है वह अपने जन्मों को बनाता है। ये इस तरह के से होता है जैसे एक जो रेशम का कीड़ा एक बिंबी बनाता है ना अपने चारों तरफ, ठीक वैसे ही ये जो जीवात्मा होता है ये अपने जन्मों की रचना करता है। जन्मों की रचना कैसे करता है? आप ये आपके मस्तिष्क में ये प्रश्न आता होगा कि फिर गरीब आदमी गरीब क्यों पैदा होता है? तो वो ऐसा होता है कि बहुत सी घटनाएं हमारे जीवन में ऐसी होती हैं जो हम लोगों ने अनकॉन्शियस तरीके से की हुई होती हैं। अनकॉन्शियस मतलब अचेतन रूप से की हुई होती हैं। हम लोग जाने अनजाने में बहुत चीज़ें कर जाते हैं जिसका हमें ये नहीं पता होता कि इनका परिणाम क्या होगा। हमारा जो जीने का एक स्तर होता है ना वो बहुत ही ऊपरी लेवल पर होता है। मतलब इसको मैं कोशिश करता हूँ समझाने की आपको। जैसे मान लीजिए कोई आजकल का युवा है, उसको चाहिए कि मान लीजिए एक बच्चा ही है, वो पबजी खेल रहा है, गेम आती है पबजी, वीडियो गेम मोबाइल पर वो खेल रहा है और उसके उसमें पैसे लगते हैं, उस पैसे के लिए वो चोरी भी कर रहा है। उसको उसके परिणाम की परवाह नहीं है कि उसका जीवन किधर जा रहा है, परंतु वो जो भी काम कर रहा है उसका परिणाम निश्चित है। हम जो भी काम करते हैं उसका कर्मों का फल हमें ज़रूर मिलेगा। तो हम जो ये हमारी जो ये बेहोशी वाली अवस्था होती है, एक तो स्थूल रूप से बेहोशी वाली अवस्था वो होती है कि आपको किसी ने कुछ खिला दिया पिला दिया आप बेसुध होके गिर गए, एक तो वो होती है। एक सूक्ष्म बेहोशी की स्थिति ये होती है मानसिक रूप से अवचेतन मन के स्तर पर, जहाँ पर मनुष्य को ये नहीं पता लगता कि वो क्या कर रहा है और वो उसका परिणाम क्या निकलेगा। ये बहुत सरल सी चीज़ है जो समझने वाली है, हालांकि इसको इसकी जो इसका जो अभ्यास है सर्वश्रेष्ठ होता है कि ये बचपन से ही किया जाए। जब हम अपने बाल्यकाल में होते हैं यदि तब से ये चेतना हमारे अंदर पैदा हो जाए या बच्चों में पैदा कर दी जाए कि आप अपने हर कार्य के लिए जिम्मेदार हैं, तो वह काफ़ी बड़े स्तर तक अपने जीवन को अपने नियंत्रण में ले सकते हैं। नहीं तो जब ये आदत पक जाती है कि जो होगा देखा जाएगा, अरे ये तो ऐसे ही चलता है, अरे ये तो किताबी बातें हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, कोई नहीं मौज करो आगे की आगे देखेंगे, ये जो ये एटीट्यूड होता है ना, ये दृष्टिकोण होता है, यही मरवा देता है आदमी को। फिर आदमी अपने आसपास एक ऐसा मोटा जाल चुन लेता है। जब वो युवावस्था के बाद जब प्रौढ़वस्था में हो जाता है, तो वो जो उसके बना हुआ जो एक संस्कार है, उसके जो किए हुए कर्म हैं, जो उसकी आदतें हैं जिनकी वजह से उसने अपना एक कर्मों का एक ढेर खड़ा कर दिया, उससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। फिर वो जो ढेर होता है ना वही आदमी को नियंत्रित करता है। इसका बहुत ही प्यारा सा आपको उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसने अपने युवा काल में क्रोध को अपने जीवन में स्थान दे दिया। उसको ये लगता है कि क्रोध करने से बहुत सारी चीज़ें नियंत्रित हो जाती हैं, लोग भयभीत होते हैं, बहुत अच्छी बात है। आरंभ में तो उसको बहुत मज़ा आने लगता है, परंतु वो ये नहीं जानता कि इसकी वजह से एक बहुत मोटी परत उसके कर्मों के संस्कारों की उसके आसपास जमा हो रही है। जब वो युवावस्था में पहुंचेगा तो वो संस्कार और प्रबल हो जाएंगे, और जब वो प्रौढ़वस्था में पहुंचेगा तो बहुत ही प्रबल हो जाएंगे। और मुझे लगता है कि प्रौढ़वस्था तक पहुँचने से पहले वो हार्ट अटैक से मारा जाएगा, क्योंकि उसका BP इतना ज़्यादा शूट कर जाएगा इस क्रोध की वजह से कि वो BP बहुत हाई BP में ही रहने लगेगा। तो ये चीज़ें होती है। हाई BP जब हो जाएगा, आंखों से खून आने लगेगा, तब वो समझेगा अरे ये क्या हो गया, तो उसके लिए वो गोलियां खाएगा, लाखों रुपए हॉस्पिटल में देगा। परंतु वो उस समय पर ऐसी जब परिस्थिति होती है जब हम अनजाने में अपने आसपास एक मोटी परत कर्म के संस्कारों की बना लेते हैं, तब योग हमारे काम आता है। ये जो योग होता है ये हम बीच में एक रास्ता बनाता है जो कि हमारे संस्कारों और जीवात्मा इन दोनों के बीच में एक स्पेस पैदा कर देता है। तब जीवात्मा अगर उसकी दृष्टि ठीक है, अगर उसमें बुद्धि है ईश्वर की कृपा से, तो वो ठीक ठीक रूप से ये देखने लग जाता है कि ये मैं हूँ और ये मेरे संस्कार हैं जो मैंने बनाए हैं, क्या मैं इन्हें बदल सकता हूँ? तो योग वो भी आपको फ्रीडम देगा उसको बदलने का, उसको ठीक करने का। यदि आपको उस समय पर सही ज्ञान मिले तो आप उन सभी गलतियों को ठीक कर सकते हैं। ये योग आपको बहुत बड़ी शक्ति देता है, और यही साधन जो है योग का, ये अपने आप में बहुत बड़ा आशीर्वाद है ईश्वर का कि उन्होंने इस प्रकार की व्यवस्था रची है कि मनुष्य अपने वायु प्राणों को कंट्रोल करके बाद में भी अपनी गलतियों को ठीक कर सकता है। परंतु इसके लिए बहुत उचित है कि आप योग उसी व्यक्ति से सीखें जो इसी माइंडसेट से आपको सिखा भी रहा है। इसका बहुत विशेष ध्यान रखना आपको चाहिए। आप हर आदमी जो सीखने जा रहा है योग, उसका अपना एक माइंडसेट होता है और सिखाने वाले का अपना एक माइंडसेट होता है। अगर कोई आदमी अपने घुटनों का दर्द ठीक करने के लिए जा रहा है तो सिखाने वाले भी ऐसे मिलेंगे जो घुटनों का दर्द ठीक ही करना बता रहे हैं, उससे आगे नहीं बता रहे। परंतु यदि आप वास्तव में योग का स्वाद चखना चाहते हैं तो आपको उसको प्राण के लेवल पर समझना पड़ेगा। उसको प्राण के लेवल पर समझने की आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए, उसको वहाँ पर जगह देनी पड़ेगी। जब इतनी गहराई के साथ आप योग को अपने जीवन में जगह देंगे, स्थान देंगे, तो वह आपके जीवन में एक बहुत ही ज़बरदस्त आमूलचूल परिवर्तन कर देगा। और वो इतना सुंदर परिवर्तन होता है कि मतलब स्वर्ग आपको कहीं बाहर नहीं मिलेगा, वो स्वर्ग आपके अंदर ही पैदा हो जाएगा। वो इतनी सुंदर तरीके से आपको बना देगा, आपके ऊर्जा तंत्र को डिज़ाइन कर देगा, उसको एडजस्ट कर देगा। यही योग की बहुत बड़ी सुंदरता है। और आजकल जो हम योग पारंपरिक रूप से जो देखते हैं, सीखते हैं, जो अच्छे अच्छे आचार्य हैं, मेरी नज़र में, अगर मैं किसी की एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा हूँ, परंतु मैंने जो योग की क्रियाएं सीखी हैं वो जग्गी वासुदेव जी से सीखी हैं। वो क्या है नहीं है वो उनका व्यक्तिगत मैटर होगा, जो भी आप लोग उनके बारे में सुनते होंगे, अच्छा सुनते होंगे, बुरा सुनते होंगे, मेरे को उनसे मतलब नहीं है। परंतु वे जो क्रियाएं सिखाते हैं वह बहुत ही ज़बरदस्त होती हैं, बहुत ही मूलभूत होती हैं। तो मैंने उनसे भी सीखी है शांभवी महामुद्रा, इसी प्रकार की कुछ और क्रियाएं भी वे योग की सिखाते हैं, जिनका मुख्य रूप से यही प्रयोजन होता है कि आप अपने जीवन में वायु को, प्राण को अपने अधीन करके उसको कंट्रोल करें, और जिसको कंट्रोल में आने के बाद जीवन का कंट्रोल आपके हाथ में आ जाता है। मुख्य रूप से जीवन कुछ नहीं है, जीवन प्राण ही है, प्राण ही जीवन है, प्राण नहीं है तो जीवन नहीं है, सिंपल सी बात है। तो यदि आप प्राणों को नियंत्रित करते हैं तो जीवन भी आपके नियंत्रण में आ जाता है, परंतु उसके लिए धैर्य, एक पवित्र मंशा होनी चाहिए। आप अगर खाली पीठ का दर्द ठीक करने जा रहे हैं तो पीठ का दर्द ही ठीक कर पाएंगे, इससे आगे आप नहीं बढ़ पाएंगे। तो आप योग की क्रिया सीखते हैं, योग को स्थान देते हैं, वो आधा काम है। आधा काम यह है कि आपके पास सही ज्ञान भी हो, सही एटीट्यूड भी हो उसको सीखने का। केवल प्राण की क्रिया कर लेने से भी पूरा काम नहीं होगा, और केवल ज्ञान होने से ही पूरा काम नहीं होता है। आपके पास बहुत अच्छा ज्ञान है, बहुत सिद्धांतों की जानकारी है, परंतु अपने जीवन में जब आप उन्हें उतारने जाते हो तो आपको बड़ी कठिनाई का अनुभव होता है, बहुत बड़े स्तर पे होता है। वो ऊपरी स्तर पे कोई दूसरा आदमी देखकर नहीं बता सकता कि ये व्यक्ति इतना ज्ञानी है, परंतु जो व्यक्ति वह स्वयं होता है ना, उसको पता होता है कि वह जो जानता है उस चीज़ को वो कर नहीं पा रहा है, क्योंकि उसके जो पिछले संस्कार हैं, जो उसने अविद्या से बनाए हैं करके, वो आड़े आ जाते हैं। और जब वो आड़े आ जाते हैं, वो बाधा के रूप में सामने आ जाते हैं, तो उसका जितना भी सुंदर ज्ञान हो, कितना भी अच्छा ज्ञान हो, उसको वो कभी भी क्रियान्वित नहीं कर पाएगा। तो क्रियान्वयन के लिए बहुत आवश्यक है कि हम अपने मन और शरीर को उस लय में रखें कि वो ज्ञान के अनुरूप काम कर सके। ये पूरा का पूरा एक, मतलब आप समझिए, बहुत ज़बरदस्त फिजिक्स है ये, एक पूरा एक विज्ञान है। मतलब ये मटेरियल साइंस कह लीजिए आप, बहुत ही सूक्ष्म स्तर पे, कि मन शरीर के साथ, आत्मा इन सब के साथ जुड़ा हुआ है, और इन सब को ठीक करना वायु के माध्यम से, प्राणों के माध्यम से, ताकि आत्मा अपना कार्य ठीक से कर सके अपने ज्ञान के अनुरूप। ये बहुत ही सूक्ष्म और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। हम जीवन लेते हैं, जीते हैं, बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन अपने जीवन में वो कर नहीं पाते हैं। तो उसका सबसे बड़ा प्रमुख कारण यही होता है कि हमारे मस्तिष्क में, या कह लीजिए कि जो हमारा अवचेतन मन है, उसमें इतने सारे संस्कार होते हैं जो कि हम जो सोच रहे हैं उसका विरोध कर रहे होते हैं पीछे पीछे बैकग्राउंड में, और वो हमें पता नहीं होता है। परंतु आप अगर बहुत ही सूक्ष्मता के साथ अपने भीतर एनालाइज करेंगे तो आपको ना एक अजीब सा दबाव महसूस होगा अपने अंदर। आप आंख बंद करके जरा सोचें कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, अपने आप से कुछ प्रश्न पूछेंगे ना तो ये चीज़ें आपके सामने आने लगेंगी कि मैं ये चीज़ें क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, कर पा रही हूँ, ये क्यों नहीं हो पा रहा। तो वो जो पीछे के जो हमारे संस्कार होते हैं, जो जब हमने कर तो लिए थे गलती से, परंतु अब वो हमारे सामने बाधा के रूप में आते हैं, जो कि मैच नहीं करते उसकी फ्रीक्वेंसी से जो हम सोच रहे हैं। उदाहरण के लिए कोई लालची आदमी दान देने की सोचे, वो बेचारा, लेकिन उसके जो पीछे के, पिछले जीवन के, या कह लीजिए इसी जीवन के जो पहले के संस्कार हैं, लूट खसोट के, बेईमानी के, वो ना उसे करने नहीं देंगे, फिर वही विचार उसके अंदर आने लगते हैं कि यार क्या फ़ायदा, कुछ तो मिलेगा नहीं, क्या करना किसी का भला करके, और वो नहीं कर पाता है। तो इस तरह के अनगिनत विचार बहुत ही बिजली की स्पीड से चल रहे होते हैं हर किसी के मस्तिष्क में, और इसीलिए एक अवस्था के बाद, एक आयु के बाद व्यक्ति अपने आप को सुधार नहीं पाता। और यदि सुधारना चाहे बिना योग के, तो उसको बहुत ज़बरदस्त विल पावर चाहिए होगी। जब वो विल पावर होगी तो भी वो सुधार लेगा अपने आप को, परंतु वो बहुत ही कठिन भी रास्ता होता है। और आजकल का जो जीवन है हमारा, वो इतना भाग दौड़ भरा जीवन है, इतना भाग दौड़ भरा जीवन है कि हमारे पास ना तो सोचने का टाइम है, करने का टाइम तो भूल ही जाइए आप। तो अगर हम चाहें कि आज के दौर में हम विल पावर का उपयोग करके करें, तो वो जो करता है भाई, हम तो उसको हैट्स ऑफ करते हैं। वो बहुत ज़बरदस्त आदमी है, बहुत ज़बरदस्त व्यक्ति है, जो अपने विल पावर से आज भी कर ले अगर उसको ऐसा अवकाश मिले। परंतु अधिकांश लोग को बहुत कठिनाई होती है, क्योंकि जीवन में हर एक की परिस्थिति अलग अलग है। हर व्यक्ति की जीवन की परिस्थिति एक जैसी नहीं है। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती है जो बड़े से बड़े धुरंधर विल पावर वाले आदमी को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दे। तो ऐसे में योग आपको आके बचा लेता है, योग आपके लिए रास्ता आसान कर देता है। वह आपके प्राणों की संरचना इस प्रकार से कर देता है कि वो बहुत हल्के हो जाते हैं और उनको अंदर ही अंदर मैनेज करना ईजी होता है। आप इच्छा करते हैं तो मन भी वही इच्छा करेगा, शरीर भी वही इच्छा करेगा, तो पूरा का पूरा सिस्टम उस इच्छा को फॉलो करेगा। यही जीवन की स्वतंत्रता होती है, और जब यह आपके जीवन में आ जाती है स्वतंत्रता, तो आप कॉन्शियस रूप से चेतना के साथ उसको देखने की कोशिश करें कि कहाँ मैं जा रहा हूँ, मुझे कहाँ जाना चाहिए। और ऐसे समय पर जब ये नियंत्रण आपके हाथ में आता है, तो क्या करना है आगे, नियंत्रण हाथ में आ गया, गाड़ी का स्टीयरिंग हाथ में आ गया, गाड़ी चलानी आती है, तो अब आपको ये जानना है कि जाना कहाँ पे है, और ये बताएगा आपको वेद। अगर योग के साथ आप वेद को लेके चलेंगे, तो आपको जीवन जीने का असली मजा आएगा। केवल ये जीवन नहीं, इस जीवन के बाद के भी जितने जीवन हैं, वे भी आप ठीक प्रकार से तय कर सकते हैं कि मुझे कैसे जीना है, कहाँ कैसे रहना है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही ज़बरदस्त विज्ञान है, जिसकी मुझे लगता है कि एक पॉडकास्ट का एपिसोड बहुत छोटा पड़ता है। इसके ऊपर अगर बोला जाए तो मेरे को लगता है कई दिन लग सकते हैं। ये इतना बड़ा विषय है जो मैं आपको अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ। यदि आप इसमें रुचि रखते हैं, आगे जाना चाहते हैं, तो एक योग्य गुरु को ढूंढिए जो आपको क्रियाएं ठीक से सिखाए प्राणों को नियंत्रित करने की। मेरी रिकमेंडेशन है सद्गुरु जग्गी वासुदेव जी, बहुत अच्छे कोच हैं, टीचर हैं, बहुत अच्छा उनका प्राणों पर अधिकार भी है, बहुत सरल क्रियाएं वे सिखाते हैं। तो उनका एक ऑनलाइन इनर इंजीनियरिंग का प्रोग्राम भी होता है, अगर आप वो, मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ, परंतु मुझे, मैं खुद ये कर चुका हूँ, मुझे इसका लाभ हुआ है, तो वही चीज़ मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो आप वो सीख सकते हैं, बहुत सरल है। और उसके बाद जीवन को आप हाथ में लेने के बाद आप देखिए कि वेद आपको क्या बोलते हैं, तब आपको वेद की आज्ञाओं पर चलने में बहुत सरलता अनुभव होगी। अन्यथा वेद के मंत्र जान लीजिए, उसका अर्थ जान लीजिए, सब कुछ हो जाता है, परंतु जो शरीर और मन है ना, ये भी अंदर ही अंदर विरोध करते हैं। यदि ये एक लय में आपके साथ चलने को तैयार हैं, तो ये असली आप इसका लाभ ले पाएंगे वेद के ज्ञान का। ओ